ओम शांति। अभी अभी 5 तारीख को बाबा आए थे तो बाप दादा ने बहुत अच्छी एक नई पॉइंट सुनाई कि बाप का यादगार है 3 स्वरूप में। बाप संगम पर इस सृष्टि पर आकर के 3 प्रकार से स्वरूपों में कर्म करता है। ऐसे बच्चों का भी संगम पर 3 स्वरूप है। एक है सिर्फ संगम पर ही है, सारे कल्प में नहीं है। संगम पर सबसे पहले बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान सुनने के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता सो देवता संस्कार यहां ही भर के जाएंगे तो भविष्य में जन्म होगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो बाबा ने कहा यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये संगम पर जैसे बाप के 3 कर्तव्य है ऐसे बच्चों के लिए भी है। अभी प्रश्न आता है कि हम ब्राह्मण कब बने, सिर्फ हम ही बने कि औरों को भी बनाना चाहिए? तो ब्राह्मण वो है 2 दफा स्नान करते हैं, उसको कहा द्विज कहते हैं। 1 दफा सवेरे 1 दफा शाम को लौकिक वाले पानी का स्नान करते हैं, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद तो मुरली का ज्ञान का स्नान। तो सवेरे उठते ही शिव बाबा को, बाप दादा को, अपने को आत्मा समझकर अगर आप याद करते हो, ये ब्राह्मणों का सबसे पहला कर्तव्य है। अमृत वेले योग चाहिए, योग शक्ति के द्वारा हम स्वयं को, आत्मा को शक्ति का स्नान कराते हैं। और जब तक अमृत वेला ब्राह्मणों ने, बाबा के बच्चों ने योग नहीं किया तो देखना मुरली सुनो, मुरली याद नहीं रहती है कि बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो ज्ञान धारण नहीं होता, याद नहीं होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी यादगार है कि स्नान करके फिर मंदिर में जाते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो यहां भी है सवेरे उठते ही शक्तियों का स्नान चाहिए, बुद्धि को स्वच्छ करना चाहिए। जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं है, अगर बुद्धि के ऊपर सारा दिन का जो कर्म किया हुआ उसका प्रभाव है तो जब मुरली सुनते हो आप वो याद नहीं रहता है। क्यों? एक कुर्सी पर तो एक ही व्यक्ति बैठेगा ना, 2 तो नहीं बैठेंगे, एक पहले से बैठा हुआ है तो जो ज्ञान सुनेंगे तो वो कैसे बैठेगा? तो बुद्धि खाली चाहिए, स्वच्छ चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को योग चाहिए। अब प्रश्न आता है योग भी कैसे, क्योंकि ये राजयोग जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। दुनिया वाले आपको पूछेंगे कि हमने तो राजयोग सीखा हुआ है तो ये कौन सा राजयोग है? जैसे सिरदर्द के लिए 4 प्रकार की सिरदर्द होता है, अगर आप मेडिकल स्टोर में जाओ सिरदर्द की दवाई दे दो बोलो दे देंगे, लेकिन उसके पर लिखा रहता है डॉक्टर को पूछ करके दवाई लेनी चाहिए कि हमें सिरदर्द किस कारण से हुआ है। सिरदर्द एक होता है कोल्ड के कारण होता है, एक पित्त के कारण होता है, एक माइग्रेन के कारण होता है, और किसी का चश्मे का नंबर, आंखों का नंबर अगर चेंज हुआ है तो भी सिरदर्द होता है। तो दवाई की जरूरत नहीं है, तो चश्मा चेंज करो, नंबर चेंज करो, ठीक हो गया। तो इसलिए डॉक्टर को पूछ करके लेना चाहिए, वो डायग्नोस करता है किसके लिए ये दवाई है। ऐसे यहां भी राजयोग किसके लिए कर रहे हो आप? तो सिर्फ संगम पर आके कल्प के अंतिम समय पर शिव बाबा कौन है, डॉक्टर कौन है, शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है उसको, शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए फिजिशियन कहते हैं, अर्थात शारीरिक डॉक्टर है। शिव बाबा भी सुप्रीम डॉक्टर है, सुप्रीम सर्जन है। अगर आत्मा के अंदर कुछ बीमारी है उसको ठीक करने के लिए तो भगवान निराकार शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। क्यों? वो एक ही है पतित को पावन करता है, इसको कहते हैं पाप कटेश्वर कहते हैं। तो सबसे पहले चाहे जब तक हमारे पाप कटे नहीं है, बुद्धि शिव बाबा के ऊपर एकाग्र नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि का काम है ग्रहण करना है, बुद्धि ग्रहण करती है शक्तियों को, मन चिंतन करता है, आप बैठ करके भक्ति मार्ग में भगवान की बहुत महिमा किया, बहुत हमने चिंतन किया, वर्णन किया, महिमा किया, तो भी पतित आत्मा पावन नहीं बने, पाप मिटानी है। आप जानते हैं कितनी पूजा किया, कितना व्रत किया, कितने भगवान के सामने बैठ के महिमा करते हो, मूर्ति के सामने बैठकर, तो मन चल रहा है और बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था। अब संगम पर आकर के शिव बाबा ने कहा कि बच्चे आपके पास दो शक्तियां हैं, मन सोचता है, बुद्धि अनुभव करती है, और मन और बुद्धि दोनों एक हो जाती है, उसका नाम है एकाग्रता। जैसे भारत के अंदर कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहेंगे, विधि है। छोटी अंगुली से लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तब उसका नाम है नमस्ते। ऐसे ये भौतिक हो गया, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी मन और बुद्धि को कैसे जोड़े आप? बाबा कहता है आत्मा समझ, मन बुद्धि को मेरे पर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा पर एकाग्र करो। तो कैसे एकाग्र करें? जब तक ब्राह्मणों को योग नहीं है, शक्ति ज्ञान नहीं है, योग करने की ज्ञान चाहिए। किस प्रकार योग करें? ऐसे अगर बैठो आप, बैठ करके मन से विचार कर रहे हो, बाबा आप प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो, हाँ बाबा को पता है, उसके बीच में बुद्धि खाली है, बुद्धि भटकती है, बुद्धि के अंदर दूसरे विचार आते हैं, तब आप कहते हो योग में जब बैठते हैं व्यर्थ विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं। कहां से चलते हैं वो? मुंह तो एक ही है, इस मुंह से आप खा भी सकते हो और बोल भी सकते हो, इसलिए साइंस ने कहा टू थिंग्स कैनॉट बी डन एट द सेम टाइम, दो काम एक साथ नहीं होता है, या खाते रहो या बोलते रहो, दोनों में से एक होगा। तो यहां भी मन सोचता है, बुद्धि जो सोच रहे हो आप, बुद्धि उसका अनुभव करती है। क्यों? आप जानते हो संस्कार भी तभी बनता है, संस्कार भी तभी मिट सकता है। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर देख लो, एक बटन दबाओ तो प्ले हो रहा है, जो भरा हुआ गीत मिटता नहीं है। अगर भरा हुआ गीत मिटाना चाहते हो तो प्ले और रिकॉर्डिंग, ये दोनों बटन एक साथ दबाना पड़ेगा, और उसके बाद आप बिल्कुल शांति में बैठते हो, कोई आवाज नहीं करते हो, जो अंदर भरा हुआ है वो मिटता जाता है। अगर कुछ आवाज करते हो, जो भरा हुआ है दोबारा भर जाएगा और कुछ। तो ये भौतिक में मैकेनिज्म ऐसा है, टेप रिकॉर्ड के अंदर ऐसा है, ऐसे यहां भी आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी हमें ये ज्ञान चाहिए। आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर के एक एक इंद्रियों के द्वारा, एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो, वो हर सेकंड, हर एक एक कर्म आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, अंदर भर जाता है, और जैसे अंदर भरा हुआ है उसी प्रकार पहले स्वप्न आते हैं, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? मनुष्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, महात्मा हूं, पुण्य आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो, कौन से, कैसे पता चलेगा? तो स्वप्न बताते हैं। हमारे अंदर किस प्रकार की बीमारी है तो स्वप्न बताता है। जब आप सोते हो किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं? अगर इस प्रकार के बार बार स्वप्न आते हैं, अर्थात उस प्रकार के संस्कार अंदर भरे हुए हैं, स्वप्नों में पता चलता है, फिर मन में विचार चलता है, फिर न चाहते हुए समय पर परिस्थिति ऐसी आई, संस्कार जागृत हो जाता है, कर्मों में आता है। तब बाबा कहता है, शिव बाबा क्यों आया है? हम बच्चों को, हम साधारण मनुष्य थे,
तो मनुष्य से क्या बना रहा है, पहले ब्राह्मण बना रहा है। कैसे बनेंगे? तो आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया। क्या ज्ञान सुनाया? आप शरीर आपका साधन है और आप इस शरीर को चलाने वाले साधक हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आत्मा के अंदर, आत्मा ने इस शरीर के द्वारा 63 जन्मों से बहुत पाप किए हुए हैं। पाप, आप पूछेंगे पाप क्या है और पुण्य क्या है। फिर प्रश्न आता है, आत्मा ने स्व इच्छा के विरुद्ध इस शरीर के संबंध संपर्क में आकर, किसी देहधारी के संबंध संपर्क में आकर, किसी के कहने सुनने के प्रभाव में आकर, जो इच्छा के विरुद्ध जो भी कर्म किया है उसका नाम है पाप। आप चाहते नहीं हो लेकिन किसी, कोई आपको कहता है भाई जी चाय पी लो, आप कहेंगे नहीं हम चाय नहीं पीता हूं। नहीं कोई अर्जा नहीं, एक दिन थोड़ा सा पी लो। फिर लगता है जो बार बार फोर्स कर रहा, थोड़ा सा पी लेते हैं, है ना, न चाहते हुए भी किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उसके कारण जो कर्म करते हो न चाहते हुए इच्छा के विरुद्ध, तो उसको पाप कहते हैं। तो आत्मा को ज्ञान नहीं था, स्वयं का परिचय नहीं था, मैं आत्मा को पता ही नहीं था। ये ज्ञान सुनने से पहले भी हम साधारण मनुष्य थे। और उससे भी नीचे जाओ, आप मनुष्य से भी नीचे जाओ, कौन थे हम? असुर थे। एक एक सेकंड में थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत मुख से गलत शब्द निकलते हैं, है ना। तो अभी ज्ञान समझ में आया। तो क्या ज्ञान समझ में आया? इस शरीर को चलाने वाला मैं आत्मा, और मेरे सामने जो भी खड़ा है वो भी एक आत्मा है, और वो भी एक ही बाप का बच्चा है। हमारा भी वही बाप है, उनका भी वही बाप है। ये समझ में आ गया। जिसके बुद्धि में ये अच्छी तरह समझ में आया उसको कहा आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार है। क्यों? शुभ बाबा, ब्रह्मा बाप के द्वारा आकर हमें ये ज्ञान देता है। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा हमको मिला तो हम ब्रह्मा कुमार कहते हैं। अगर ये ज्ञान अभी तक पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मेरे सामने जो भी खड़े, किसने काले कपड़े पहने हैं, किसने सफेद कपड़े पहने हैं, किसने रंगीन पहने हैं, कैसे भी कपड़े पहने दो, लेकिन आत्मा मनुष्य है ना। चाहे कोई कितना गरीब हो, चाहे अमीर हो, करोड़पति भी हो, लेकिन है तो मनुष्य है ना। दो ही आंख है, दो ही पाव है, चार पाव तो नहीं है। तो ये समझ बाबा ने आकर के, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें ये समझ दिया। तो जिसके अंदर ये आध्यात्मिक समझ आया, यहां मुझे याद है एक विदेशी बहन ने हमको एक बार प्रश्न पूछा 2 साल पहले, किसको आप आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हो? Who is spiritual? जिसने 3 नाम लिया, शंकराचार्य को कहेंगे हिंदू धर्म का, भारत के अंदर हिंदू धर्म है तो उसके लीडर जो है, तो उसको आप आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हो? नहीं तो क्रिश्चियन धर्म के बहुत बड़ा है गुरु पोप को आप आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हो? नहीं है, चलो आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सुनाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, क्या उनको आप आध्यात्मिक मानते हो? तो आध्यात्मिक कौन है? चलो आप अपने आप से पूछो, आपने, आप में से कितने भाई बहने होंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से ज्ञान सुना है, तो आप अपने आप से पूछो कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं, आई एम स्पिरिचुअल। किसको कहेंगे? बुखार किसको आया है, कैसे पता चलेगा? तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं, हां 99 के ऊपर है, हां बुखार है, है ना। थर्मामीटर लगाने से पता चलेगा ना, नहीं तो कहेगा नहीं मुझे ठीक नहीं, बुखार आया, कोई मानेगा नहीं, दिखाई नहीं देता है। थर्मामीटर लगाते हैं तो पता चलता है। ऐसे यहां भी आप कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति ज्ञान सुनने से आध्यात्मिक कहेंगे, किसको कहेंगे? तो उसके लिए एक डेफिनेशन दिया स्पष्टीकरण कि आध्यात्मिक वो व्यक्ति है जिसके सामने कुछ भी आता है, चाहे पॉइजन आया, विष भी आया, चाहे अमृत भी आया, दोनों को स्वीकार करता है। क्यों? कि आध्यात्मिक व्यक्ति, बाबा ने आध्यात्मिक ज्ञान क्या सुनाया, ड्रामा का ज्ञान क्या सुनाया, आपके सामने जो कुछ भी होता है आता है, क्यों आया वो? आपके कर्मों का फल है। चाहे अच्छा फल आया, चाहे खट्टा आया, चाहे मीठा आया, ये आपके कर्मों का फल है। उसको हंसते हंसते स्वीकार करो। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपके बुद्धि में है, समझ आया है, मेरे जीवन में मेरे सामने जो कुछ सामने आता है ये मेरे कर्मों का फल है, फॉर ईच एक्शन, हर एक कर्मों का फल है। फिर आता है कि खट्टा भी आ सकता है, मीठा भी आ सकता है, कोई आपकी महिमा भी करेगा, कोई ग्लानी भी करेगा, कोई पॉइजन भी देगा। मीरा को पॉइजन दिया तो उसने भगवान को याद करते हुए स्वीकार किया, क्या बन गया? अमृत बन गया। तो यहां भी बाबा कहता है बच्चों, कोई भी परिस्थिति ऐसी हो आपके सामने आई, अभी हर मुरली में बाबा ने इस साल बार बार कहा कि एक शब्द बार बार रिपीट किया कि बच्चे दिल से अगर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते हो, बाप किसका है, किसके लिए है? बच्चों के लिए है, बच्चों का बाबा है। अगर दिल दिल अर्थात समझ, समझ से अगर आप बाप को याद करते हो, बाप बच्चों के सामने हाजिर है। इस साल बाबा ने हर मुरली में बार बार कहा कि बच्चे एक काम करो, कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, किसी समय, आज भी मुरली में बाबा ने कहा, अगर बच्चा किसी को, बच्चे कोई भी बच्चे किसी को ज्ञान समझाते हैं और सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है तो देखता है ये सुनाने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है, बाबा उनके अंदर प्रवेश करके ज्ञान सुनाएगा। क्योंकि शिव बाबा का कर्तव्य है ये, पतित आत्मा को पावन बनाना। शिव बाबा का कर्तव्य है कलयुग को मिटाकर सत्युग की स्थापना करना। तो उसके कर्म में किसी का आधार ले सकता है या स्वयं भी कर सकता है। तब बाबा कहता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जिसके अंदर यह आध्यात्मिक ज्ञान, उसको कहा ब्राह्मण है वो। तब बाबा कहता निरंतर, जैसे किसी को सफेद कपड़े पहने हैं उसको कहो यहां जमीन पर बैठो, तुरंत याद रहता, नहीं कपड़े काले हो जाएंगे। अगर रंगीन कपड़े पहने हैं नीचे बैठो चलेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा कि काला होगा तो दिखाई नहीं देगा, है ना। बाबा ने इसलिए ऐसे यूनिफॉर्म दिया है कि बच्चे सफेद कहीं भी बैठो, काला लग जाएगा तो दिखाई देगा काला हो गया है। तो इसलिए बुद्धि को भी, किधर भी बुद्धि गई, किसी पर नजर गई, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, चारों तरफ सब प्रकार के नेगेटिव चीजें आपके सामने होंगी। हर एक व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार, बोल, आचरण, क्योंकि मेरा हाथ देखो, सभी पांचों अंगुला एक जैसे नहीं है, एक मोटी है, एक पतली है, एक छोटी है, एक लंबी है ना। तो बाबा के बच्चे भी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक के अलग अलग पार्ट है और हर एक अपने पार्ट के अनुसार ही बोलेगा, कर्म करेगा। आपको ऐसा नहीं ऐसे बोलो ये कहना, हमें अभी तक ज्ञान स्पष्ट नहीं है, बुद्धि में जागृत नहीं है, तब हमारे मुख से निकल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलो। अगर आपको ज्ञान स्पष्ट है कि ड्रामा इसका पार्ट ऐसा है, फिर भी आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई मुरली में, बच्चे बाबा को पता है हर एक का पार्ट अपना अपना है, भरा हुआ है, फिर भी बाप संगम पर पुरुषार्थ कराता है। आज बाबा ने कहा फिर भी, जानता है बाबा, फिर भी संगम पर स्वयं बाप आया है, बच्चों से पुरुषार्थ कराता है, कि ऐसी कोई आदत को आप ज्ञान और बाप के मदद से अभी भी कोशिश करेंगे तो परिवर्तन कर सकते हो। तो ज्ञान का उपयोग करने के लिए ज्ञान पहले याद होना चाहिए। तो ज्ञान की ज्ञान कहां ठहरेगा? जिसकी बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इसलिए कहा ब्राह्मणों के लिए सबसे पहला लक्ष्य है कि बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए योग चाहिए, और योग भी वो चाहिए विधि पूर्वक। तब कहा चार प्रकार के सिर दर्द है तो आप किसके लिए दवाई लेंगे? तो यहां भी योग बहुत प्रकार के, दुनिया में कितने प्रकार के योग हैं, कितने लोग भगवान को याद करते हैं, हमसे भी और 10-100 गुना बहुत स्नेह प्यार से भगवान को याद करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। और आप भी जानते हो एक कागज को आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कागज जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें हैं, अगर एक ग्लास पकड़ते हो, अगर हाथ हिलता नहीं है, एक मिनट के अंदर कागज जल के राख हो जाता है। तो आप कहेंगे हम एक घंटा योग में बैठे थे, जरूर जरूर बैठे थे, लेकिन मन बुद्धि कहां थी? प्रश्न ये, बैठे तो जरूर लेकिन किससे कनेक्शन जोड़ा है? आप देख लो, रेडियो ऑन करो तो रेडियो के अंदर आवाज आएगा, लेकिन आपको कौन सी न्यूज सुननी है? तो उस नंबर मिलाएंगे तो वही आवाज आएगा, नंबर है। अगर आप रेडियो ऑन करते ही बीबीसी की न्यूज सुनना चाहते हो तो उसके नंबर है, वो नंबर घुमाएंगे लगाएंगे तब वही वाइब्रेशंस कैच करते हैं। जरूर ये भाई जी योग में बैठा है, लेकिन किसके साथ योग कर रहे हो आप? योग तो जरूर कर रहे हो आप, लेकिन किसके साथ? अगर एक ईश्वर के पास, शिव बाबा के साथ योग लगाते हो, उसने कहा कि मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, पाप कटेश्वर उसने कहा है। अगर आप यहां बैठ के और कोई किसी को याद करते हो, और कोई आपके इष्ट देव है, और कोई भगवान आपके लिए है ना, कि जो आपकी बहुत समय से मान्यता थी, आप कहेंगे हनुमान को याद करना चाहिए, आप कहेंगे श्री राम को याद करना चाहिए, भगवान ही है ना, श्री राम को याद, श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। हां करो, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं पाप मिटाता हूं। लक्ष्मी की आप इधर बैठ के याद करो, लक्ष्मी ने कभी नहीं कहा मैं पाप मिटाती हूं, धन की देवी है। सरस्वती की पूजा यहां बैठ करके आप ध्यान करो, विद्या देवी है। लेकिन एक निराकार ईश्वर ने कहा है, तो यहां बैठ के अगर आप उसके साथ बुद्धियोग जोड़ते हो तो उसकी शक्ति ही पाप मिटाती है, अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। तो उसके साथ बुद्धियोग कैसे जोड़े? अब बात आता है कनेक्शन कैसे जोड़े हम, वो भी बहुत सहज है। और बाबा हर मुरली में कहता है कि बच्चे पाप शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर है। तो पहले आत्मा समझ करके बैठो। तो आत्मा समझ के बैठेंगे, शरीर को कहां छोड़ देंगे? बाहर छोड़ देंगे? नहीं, शरीर तो है, शरीर है तो उसके लिए पाव दर्द हो रहा है, कंबर दर्द होता है, हाँ कोई आया गया इधर उधर दिखाई देता है, तो कैसे? शरीर में बैठे आत्मा, अगर शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो अशरीर ही कैसे बने? शरीर में रहते हुए, शरीर में बैठे हुए आंखें खुली है, आंखें बंद नहीं करते राजयोग के अंदर, आंखें खोल करके भी शरीर के भान से आप अलग हो सकते हो। तो उसके लिए विधि है, जब भी आप बैठो योग में आके, सवेरे और शाम को आके जो अमृत वेले बैठते हो, शाम को योग करते हो, आंखें खोल के आराम से बैठो, सामने बाबा का चित्र है, आंखों से देखते रहो, लेकिन मन और बुद्धि को परम धाम तक ले जाना है। तो अपने आप से बात करो, पहले मन बुद्धि को एक करना है। एकाग्रता कहते हैं, मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां मैं ये आत्मा हूं। अभी ज्ञान सुना है आपने, फिर भी आप पूछेंगे मैं कौन? नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मैनेजर हूं, ये याद स्मृति रहती है क्योंकि देह में है, देह की स्मृति सदा जागृत रहती है। इसलिए बार बार पूछना चाहिए कि मैं कौन। एक दिन पूछो कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर पूछना क्या मेरे पास सर्वशक्तियां है। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो है, जैसे बाप ऐसे बच्चे होंगे, नहीं शक्तियां तो नहीं है, अभी शक्तियां लेनी चाहिए, बाबा से शक्तियां भरनी चाहिए, महसूस होता है। फिर दूसरा दिन ले लो, मैं कौन, मैं पूज्य आत्मा था। कब था पूछ लो। फिर तीसरा दिन और एक ले लो, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं सबको सुख देने वाला आत्मा हूं, सुखदाता का बच्चा हूं, दुख देने वाला नहीं। एक एक दिन एक एक स्वमान ले लो, पूछ लो मैं कौन, एक अंगुली जुट जाती है। मन ने पूछा, बुद्धि ने जवाब दिया, नहीं तो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बुद्धि क्या काम है, अरे आज किसको मिलना था, आज किसको फोन करना था, दूसरे विचार आ जाएंगे, क्यों खाली बुद्धि भटकती है। तो अगर सामने भाई बैठा, मैं भाई जी पूछो, भाई जी आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ना, तो आप अपने आप से पूछो मैं कौन, दूसरा पूछो मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मेरा रूप कैसा है। तीसरा पूछो, अगर मेरा ये रूप है तो मेरे गुण कौन से हैं, मेरे सात गुण हैं। क्रोध करना मेरा गुण है, कभी कभी हम कहते हैं हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता, गुस्सा हम करते हैं, हमारा गुण है। तो ये महसूस होना है, नहीं ये हमारा गुण नहीं है, ये शरीर के गुण है। हमारे पास हमारा गुण मुझे याद नहीं है तो हम दूसरों का गुण यूज करते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज नहीं है, कुछ काम करना है तो दूसरों से लेंगे ना। तो इसलिए आपको अपने गुण याद नहीं है तो दूसरों के गुण हम यूज करते हैं। इसलिए रोज याद करो कि मेरे गुण कौन से हैं। मैं बिल्कुल जब आया था पवित्र आत्मा था, जब मैं आया था बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा था। धीरे से एक 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 गुणों को याद करो, मेरे सात गुण कौन से हैं, और ये रोज याद करना जरूरी है। जब तक आपको, जैसे हम बार बार हर सेकंड सामने वालों को देखते ही शरीर ही दिखाई देता है, ये भाई जी है, ये माता जी है, ये बहन जी है, शरीर ही दिखाई देता है, चमकता हुआ आत्मा ब्रकुटी के बीच में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ज्ञान है इस ब्रकुटी के बीच में आत्मा बैठी है, उस आत्मा से हमारा संबंध है। तो अमृत वेले सवेरे बैठकर अपने आप को ये जागृत करते हो, अपने आप को पढ़ाते हो। इसलिए बचपन में स्कूल में पढ़ते समय बच्चों को भी सवेरे सवेरे उठा करके पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी उठो, सवेरे मन स्वच्छ होता है, उस समय पढ़ो तो याद रहेगा। तो यहां भी सवेरे सवेरे बुद्धि सो के, आत्मा सो के उठ गई, बुद्धि स्वच्छ है, निर्लेप है, कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर, उस समय उसको पाठ पढ़ाओ कि आप कौन, मैं आत्मा हूं, ये मेरा रूप है, ये मेरे गुण है। तो याद रहेगा तो सारे दिन में गुणों का उपयोग करेगा। तो चौथा पूछो, मेरे कर्म क्या, मैं क्या करता हूं, इस शरीर में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। तो कभी सारे दिन में आप नहीं बोलेंगे मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं, मैं इस आंखों से देख रहा हूं, मैं ये आत्मा को देख रहा हूं, क्योंकि सवेरे आपने बुद्धि को पाठ पढ़ाया है। इसको कहते हैं कॉन्शियस ट्रेनिंग, ट्रेन योर कॉन्शियसनेस, अपने आप को पढ़ाओ। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाबा भी बच्चों को, अभी भी हम छोटे ही बच्चे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा कहते हैं अपने को बड़ा नहीं समझना, छोटे बच्चे हैं, छोटे समझ करके अपने आप को रोज पढ़ाते रहो तो ये पाठ पक्का हो जाएगा कि 63 जन्मों की आदत बनी है, इनको देखते ही भाई जी कहना है, इनको देखते ही बहन जी कहना है। तो इस आदत को चेंज करने के लिए तो रोज अमृत वेला ये पाठ पढ़ाना पड़ता है। जब तक ये पक्का न हो तब तक हमारी आदत देह की दृष्टि न चाहते हुए सामने किसी को देखते गलत शब्द बोलना ये परिवर्तन नहीं होता है, है ना। आत्मिक बाबा कहता आत्मा भाई भाई समझ के देखो, आत्मिक दृष्टि अपने आप नहीं होंगी, है अभ्यास। तो योग कैसे, इस प्रकार। चौथा है मेरे कर्म क्या है, मैं क्या करता हूं। और पांचवा, मैं कहां से आया। ये चार प्रश्नों का आपने जवाब दिया, इसके बीच में दूसरा कोई भी विचार अगर नहीं आया, अर्थात आपका मन और बुद्धि एकाग्र है, इधर उधर नहीं जा रहा है। जैसे अभी ध्यान से आप देख रहे हो, इधर उधर देखते हो कहेंगे मन चंचल है इनका, इधर भी सुनता भी है इधर उधर भी देख रहा है। तो टीचर क्या कहता है, सामने देखो, ध्यान से देखो, बुद्धि को एक जगह पर स्थिर करो, भटकाओ नहीं। तो यहां मन बुद्धि से बात करता है तो बुद्धि इधर उधर कैसे जाएंगे, आमने सामने जाएंगे ना। अगर पांच मिनट सिर्फ मन और बुद्धि को आप एक करते हो, अर्थात अपने आप से बात करते हो, मैं कौन, बात करना है लेकिन कैसे, विधि पूर्वक करो। विधि चाहिए कि मैं कौन, उसको कहते हैं आत्मा को जागृत करो। बार बार आत्मा शरीर के भान में आता है क्योंकि शरीर का उपयोग करते हैं हम। दूसरा, मेरा रूप कैसा है, आराम से धीरे से, इसके अंदर कम से कम 15 मिनट तक लेना चाहिए, गड़बड़ी नहीं, महसूस होना चाहिए, मंत्र नहीं है, रिपीट नहीं करना है, महसूस होना, हां मैं ये आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। फिर मेरा रूप कैसा है, इस ब्रकुटी के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा बैठा हूं मैं, ये महसूस होना चाहिए धीरे से आराम से। अभी 7 से 7:30 आधा घंटा योग करेंगे, अभी अच्छी तरह से सुनना और फिर करना, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, सुनो और उसका प्रयोग करो, तब जो प्राप्ति होती है उसको कहते हैं अनुभव। हम बहुत सुनते हैं लेकिन उसका उपयोग अगर नहीं होता है, प्रयोग नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं है, है ना। तो आराम से बैठ करके इसका अभ्यास करना 7 से 7:30 बजे तक। तो पहले पूछता आराम से, याद रखना ऊपर नीचे नहीं करना। अगर ये 5 मिनट भी आपका सफल हो जाए, 5 मिनट के अंदर मन और बुद्धि इधर उधर नहीं जाता है, जो प्रश्न पूछते हो वही जवाब आता है, अर्थात ये दोनों शक्तियां आपके कहने अनुसार चलती है, इधर उधर नहीं जाए, दोनों को आप एकाग्र करते, दोनों को जोड़ते हो, तो नमस्ते एकाग्रता है। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, मैं कहां से आया, ऊपर से आया, ऊपर क्या है, प्रश्न पूछते जाओ, तुरंत बुद्धि कहेंगी सूर्य चंद्रमा के ऊपर सूक्ष्मतन है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है, प्रश्न करते हो बुद्धि भी साथ साथ जाती है, उसके ऊपर सूक्ष्मतन के ऊपर क्या है। पर क्यों, अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हो, हमारा मन इतना स्वच्छ नहीं है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है जो अपने आप ऊपर चले जाए। आप देखना, आप यहां बैठे बैठे अभी भी देखना, सुनते सुनते हुए भी आपके मन में कितने विचार आते हैं, आप साक्षी होके देख लो, यहां बैठे हुए भी मन के अंदर बुद्धि सुन भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा सुनाई भी दे रहा है, बीच बीच में और एक कोई विचार आता है, बुद्धि के अंदर और कोई ख्याल चलता है, क्योंकि बहुत प्रभाव है। तो ये प्रभाव मुक्त जब तक नहीं, स्वच्छ नहीं हुआ है, तब तक एकाग्र नहीं होगा, इसके लिए ये काम देना पड़ता है। अगर ये देते देते आप कहो 1-2 दिन करके देख लो आप, कि मन में और कोई विचार नहीं आते हैं, अर्थात आपका मन और बुद्धि स्वच्छ है, फिर ये 5 प्रश्नों की जरूरत नहीं है, आप बैठे सीधा ऊपर ही चले जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, मन बुद्धि सूक्ष्मतन में परमधाम में जितना समय चाहे आप जोड़ सकते हो। लेकिन ऐसी हमारी आज अवस्था नहीं है, वो दिखाई देता सामने, आंखें देखती है इधर उधर घूमती है, अर्थात अभी भी स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, एक तरफ एकाग्र है तो ग्रहण होता है। तो ये दोनों बात शब्द शक्तियों को मन बुद्धि को एक करके ऊपर ले चलो। ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, परमधाम क्या है, फिर परमधाम में बाबा कौन है, बाबा के पास अष्ट शक्तियां है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है, हां बाप तो है। मैं कौन, हां मैं यहां आने से पहले शिव बाबा के साथ परमधाम में था, जैसे बाप था ऐसे ही मैं था, बाबा आपके जैसे मैं पवित्र स्वच्छ आत्मा था। नहीं तो एक आदत बनी हमारे भक्ति मार्ग के अंदर से कि बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, मांगने की आदत बनी है, वो योग में बैठ करके भी मांगते हैं। तो नहीं, कंपेयर करो, बुद्धि को परमधाम तक मन बुद्धि को लेके जाओ, दिखाई नहीं देगा कुछ, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है अभी। तो उधर जा रहे, ऊपर जा रहे हो, सूक्ष्मतन से ऊपर क्या है, परमधाम में कौन रहता है, शिव बाबा कौन है, पवित्रता का सागर है। कैसे होगा, मैं कौन, मैं भी जैसे बाप है ऐसे ही मैं था, अभी फिर से बाबा जैसे मुझे बनना है ना। तो बाबा को देखते रहो, वही रहो एक सेकंड, फिर दूसरा ले लो। बाबा कौन, शांति का सागर है। एक एक शक्ति ले लो, जैसे आप यहां बैठे हो, दिन में बाहर सूर्य आया हुआ, आपके ऊपर सूर्य था, लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, पसीना नहीं आता, थोड़ी सी गर्मी लगती है, क्यों, बीच में छत है, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर नहीं पड़ते हैं। तो ये हॉल छोड़कर आप दो मिनट बाहर जाके खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, क्या हो जाएगा, आप चाहो या नहीं चाहो, पांच मिनट के अंदर इस शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। कि इस सूर्य का काम है शरीर से गंदगी को निकालना, और वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा आत्मा के अंदर जो गंदगी है उसको निकालता है। देखो यहां भी आप शरीर को इस हॉल से बाहर लेके गए, तो ऐसे आत्मा इस शरीर के अंदर है, मकान के अंदर है, आत्मा को भी बाहर लाना है, इसलिए उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आत्मा को जागृत करो। कैसे जागृत करें, तो इसके लिए पांच प्रश्न सुनाया, जब भी योग में बैठते हो अपने को जागृत करो, मैं कौन, ये रोज चाहिए, मेरा रूप क्या है। जैसे जैसे जागृत होता है, ये पांच नंबर अगर आप घुमाओ, अगर आपको यहां से बेंगलुरु फोन करना है तो एक नंबर कम हो गया तो लगेगा, पूरा नंबर घुमाना पड़ेगा ना, तो एक सेकंड के अंदर यहां से नंबर वहां जुट जाता है लाइन। ऐसे यहां भी अगर शुभ बाबा से कनेक्शन जोड़ना चाहते हो, उसके वाइब्रेशंस लेना चाहते हो, उसकी शक्ति लेना चाहते हो, तो कौन से नंबर घुमाएंगे, याद रहेगा, कौन से नंबर घुमाएंगे, पांच नंबर याद रखना चाहिए। अगर चार नंबर घुमाया तो दूसरी जगह चला जाएगा, हाँ तीन नंबर घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, एक के बाद तीन नंबर, तीन के बाद पांच नंबर लाएंगे तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो नंबर वाइज विधि पूर्वक एक के बाद एक, तो ये पांचों नंबर अगर आप घुमाते हो तो मन और बुद्धि सीधा चली जाती है, और जितना सेकंड वहां कनेक्ट है उसको कहते हैं लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर, तो शक्ति चार्ज हो जाती है। तो ब्राह्मणों को अगर इस प्रकार करते हो आप, तो देखना दिन प्रतिदिन आपके स्वप्न पवित्र होते जाते हैं। अभी दिखाई देता है कि स्वप्न है, अंदर पाप है, कभी भी बाहर आ सकता है, तो उसको मिटाने के लिए तो ये शक्ति चाहिए, ये ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले। अगर इस प्रकार आप करते हो तो उसके बाद जो मुरली सुनते हैं तो मुरली के एक पॉइंट भी आपको याद रहता है, आज बाबा ने ये कहा था। अगर योग नहीं किया विधि पूर्वक, बुद्धि स्वच्छ नहीं हुई है, मुरली सुनी, आपने नोट भी किया, आप एक दिन प्रयोग करके देखना। कोई भी भाई या माताजी मुरली लिखते हैं, नोट करते हैं, दरवाजे पर जाते ही पूछना, भाई जी आज बाबा ने क्या क्या बताओ, कहता बहुत अच्छा कहा। वो डायरी खोल के देखेगा, अभी सुन करके 5 मिनट ही नहीं हुआ है, नहीं रिपीट कर सकते हैं। कारण आत्मा इतनी तमो प्रधान हो गई है। इसलिए क्या करना चाहिए, सुनो लिखो और मुख से वर्णन करो। आपस में दूसरा भाई मिल गया, आप मुख से वर्णन करो, देखो भाई जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। अगर मुख से रिपीट करना वर्णन करना जरूरी है, एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, तब कहता है ब्राह्मणों को ज्ञान दान करना चाहिए, ज्ञान को छुपा के नहीं रखो, ये दान करो। जितना दान करते हो उतना इसकी वृद्धि होती जाएगी, आपको भी स्मृति में आएगा। अगर औरों को सुनाना है तो याद रहेगा तो सुनाएगा ना, अगर याद नहीं तो डायरी खोल के देखना पड़ेगा। तो जो मुरली सुनते हो सारा दिन में, किसी न किसी को मुख से जरूर वर्णन करना चाहिए। एक पॉइंट, ये एक नियम बनाओ आप, तो देखना अपने आप मन के अंदर भी चलता है, फिर आपको खाता है, अरे इनको सुनाया मैंने, मैंने किया ही नहीं है, आज का मुरली के पॉइंट मैंने आचरण में नहीं लाया है, तो वर्णन चाहिए। तब बाबा कहता स्वयं ब्राह्मण बनो और औरों को भी बनाओ, औरों को भी ज्ञान देना चाहिए। अगर इस प्रकार अगर क्यों होगा, जितना आप औरों को सुनाते हो आपकी बुद्धि स्पष्ट होती जाती है, क्योंकि सामने वाला कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता है, उस प्रश्नों का जवाब भी आप देते हो। अगर आज दे नहीं सके तो दूसरा अगर कोई पूछेगा उसके पहले आप सोचते हो, अरे इन्होंने ये प्रश्न पूछा था, इसका जवाब कैसे देना चाहिए, अपने आप बुद्धि चलने लगती है। उसको कहते हैं जहां आविष्कार, साइंस ने जो इतना रिसर्च किया किस आधार से किया, जहां जरूरत पड़ती है बुद्धि अपने आप ढूंढती है। प्यास लगती है तो पानी को ढूंढते हो, नहीं तो पानी आपके सामने है कौन पीता है, जरूरी नहीं है, बिकॉज देयर इज अ नीड। जहां जरूरत होती है वहां आविष्कार होता है। तो आपको भी याद आएगा, किसी को सुनाना है, किसी ने आपको प्रश्न पूछा है, तो बुद्धि मनन चिंतन करती है। ये आदत डालो कि आज की मुरली के पॉइंट सुनना चाहिए और औरों को सुनाना चाहिए, ये ब्राह्मणों के लिए जरूर चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण इतना नहीं, फरिश्ता बनने के बगैर देवता बन ही नहीं सकते हो, ब्राह्मण सो देवता नहीं है, बीच में फरिश्ता बनना चाहिए। फरिश्ता अर्थात किसी के संबंध संपर्क में आओ, कोई गुस्सा करता है बहुत तेजी से बोलता है, डांट के बोलता है और एक शब्द यूज करता है, ठीक है उसका संस्कार है, उसके प्रभाव में आप नहीं आते हो, तो स्वभाव संस्कार का प्रभाव, औरों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, इसका नाम है फरिश्ता। किसी का रिश्ता उसके साथ नहीं है तो स्वयं, क्यों स्वयं ने योग करके शक्ति भरी हुई है, ज्ञान सदा बुद्धि में है कि ये सामने वाला आत्मा है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, ये स्मृति में है। और किसी के संबंध संपर्क में आते हो, पता है ये भाई इतना पक्का नहीं है, अभी तक इनको इतना ज्ञान नहीं है, इनको राजा बनना नहीं है, इनको देवता बनना नहीं है, समझ लिया, समझ से व्यवहार करते हो, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे गरम तवे पर ठंडा पानी डालो तो क्या होगा, उछलेगा ना, और तवा गरम है ठंडा है, गरम पानी डालो, अगर आपका दिमाग आत्मा अपने स्वमान में है, स्वरूप में है, स्मृति है, मैं ब्राह्मण हूं, सामने वाला कितना जोर से बोलता है, गुस्सा करता है, परेशान करता है, आपको नाराज करता है, तो भी आपकी मूड चेंज नहीं होती है, आपको पता है कौर जाने, आप उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हो। इसलिए उसको कहते हैं इंग्लिश में इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस, प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। सामने वाले को देखते हुए सुनते हुए आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस प्रूफ, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है कि आप स्वयं सशक्त हो, समर्थ हो। अगर स्वयं सशक्त नहीं है, ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, तो औरों के प्रभाव में आए, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। औरों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो प्रभावित आत्मा कैसे स्वयं ऊपर उड़ेंगी, डबल लाइट कैसे बनेंगी? डबल लाइट, फरिश्ता बना डबल लाइट, उसको याद है मैं आत्मा लाइट हूं और हल्का है। किसी ने गुस्सा किया, बोल दिया, बहुत समय तक मन में विचार चलता है, क्यों क्या, तो भारी होगा कि लाइट होगा? तो ये कलयुग के अंतिम समय पर ये सब दिखाई देगा, क्योंकि हम सन्यासी ने जंगल में नहीं रहते हैं, सभी के साथ सेवा करते हैं, सभी के साथ रहते हैं। राजा भी है, दास दासी भी है, प्रजा भी है, रॉयल फैमिली वाले भी है, सभी प्रकार के भाई बहने हैं, है ना? तो हरेक के बोल अलग अलग होंगे ना, सभी तो राजा नहीं होंगे, सभी आपको सम्मान से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा होती है इन्होंने मुझे सम्मान से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से करना चाहिए, मुस्कुराते हुए करना चाहिए। ये इच्छा रखना भी अज्ञान है, समझ नहीं अभी तक, इच्छा अपवित्रता का, कि आपने इच्छा रखा सामने वालों ने मुझे देना चाहिए, नहीं मुझे देना चाहिए, कि मुझे देवता बनना है, सामने वाला देवे या नहीं देवे, है ना? तो फरिश्ता इसको कहते हैं, बाबा कहता है, बाबा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतन में है, ऐसे चाहते बच्चे ऐसे बने, तो उसके लिए निशानी चाहिए, सामने वाले पहले से तैयारी चाहिए कि सामने वाला गुस्सा भी कर सकता है, कैसे भी बोल सकता है। परिवार में माताओं के पति हैं, पति के माताएं हैं, वो कैसे भी बोल सकते हैं, कि उनको अभी तक ज्ञान बैठा नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक हो, आपने ज्ञान सुना है, तो आपको सहन करना है, चुप रहना है, कि अगर आप योग करने से आपको अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, संभालो क्यों क्या नहीं, अपने आप शक्ति मिलती है। अगर योग नहीं किया तो नहीं कर सकते हो, चाहते हुए भी आप कहेंगे हमें चुप रहना चाहिए, नहीं रह सकते हो आप, न चाहते हुए उस समय मुंह खुलता है, क्यों? संस्कार अंदर फोर्स है, वो फोर्स जागृत होता है, इसलिए उस फोर्स को कंट्रोल करने के लिए बाबा का फोर्स चाहिए। अगर शिव बाबा का फोर्स नहीं है, योग का फोर्स नहीं है, तो पांच विकारों से जो आधा कलप से हमने जो फोर्स भरा हुआ है, वो फोर्स ठंडा नहीं होगा, सामने वाला व्यक्ति को देखते ही रिफ्लेक्ट करेगा। कितना भी आपको, कितना भी ज्ञान सुन लो आप, तब कहा श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, श्रवण के बाद समझ में आना चाहिए, हां मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसका आप चिंतन करते हो, एप्लीकेशन करते हो अपने ऊपर, तब अपने आप आचरण में भी आता है। पहले अपने ऊपर उपयोग करना चाहिए, सुनने के बाद बुद्धि को समझाना चाहिए, मुझे आज ऐसे करना चाहिए। कभी कभी आप सुनेंगे ज्ञान सुना मुरली, वो अपने आप नहीं आता आचरण में, मुरली सुनने के बाद बैठ करके खाना खाते चलते फिरते अपने आप से बात करो, आज बाबा ने कहा कैसे करना है, ये कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, तो अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ, चलते फिरते कर्म करते हुए आज के मुरली के पॉइंट को आप अपने आप को समझाते हो, उतना आचरण में आता है। सिर्फ सुन करके नोट करने से आचरण में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं श्रवण से आचरण में नहीं आता है, श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए, कैसे उसका यूज किया जाए। ज्यादा करके हम सुनते हैं, नोट करते हैं, डायरी यहां का यहां रह जाती है, फिर एक घंटे के बाद और एक क्लास आ जाता है, हाँ नहीं तो डायरी कब खुलेंगे, कल सवेरे खुलेंगे, नहीं उसमें से एक पॉइंट बुद्धि में बैठना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, एक ब्राह्मण बनना पहले, फिर फरिश्ता, और तीसरा देवता ही संस्कार यहां भरना है कि संस्कार से जन्म है, ज्ञान से जन्म नहीं है। अगर अंश मात्र भी क्रोध का संस्कार है तो सत्युग में जाना मिलेगा, जाना मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो उधर है ही नहीं, अंश भी नहीं है। तो हमें पूछना चाहिए हमारे अंदर किस किस प्रकार के संस्कारों का अंश है। अगर कुछ है तो ज्ञान से द्वारा अपने आप को समझाना चाहिए। हाँ सामने वाले ने दुख दिया, गलत बोल दिया, झूठ बोला, उन्होंने किया, मुझे क्या करना चाहिए, ये इन एडवांस प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए। उसी समय तैयार नहीं होगा, पहले से करो। घर में पति हमारा ऐसे बोलेगा, हमारी युगल ऐसे बोलेंगी, हमारा भाई ऐसे बोलेगा, तो क्या करना चाहिए, बाबा ने क्या सुनाया है। तो ये बुद्धि को पहले से पढ़ा करके तैयार करो कि मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए। नहीं तो जब कोई गुस्सा करता उस समय कभी बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। फिर एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद फिर शांति से समझाना चाहिए, उस समय नहीं समझाना चाहिए, ये पहले से तैयारी चाहिए। सामने जब आता है कोई, उस समय आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि उसी का भी प्रभाव होता है। तो इसलिए देवता ही संस्कार यहां भरना पड़ता है, देवता देने वाला है। तब बाबा ने कहा रास्ते पर चलो, किसी को देखते ही आपके बुद्धि के अंदर, मन के अंदर एक संकल्प उठना चाहिए, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। किसी अपना भाई बहने दिखाई दिया, आपके मन में संकल्प आना चाहिए, बाबा की मुरली के पॉइंट इनको सुनाना चाहिए, है ना। अगर ज्ञान नहीं सुनने वाला है तो आत्मा भाई भाई है तो इसको दुआएं देनी चाहिए, शक्ति का दान देना चाहिए। दुआ कैसे देंगे, बाबा से आपने शक्ति भरी है तो किसी को देखते बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। अगर किसी को देखते ही ये मन में विचार आता है अपने आप नेचुरल, तो ये देवता ही संस्कार है, देने का संस्कार है। और अपना कोई ज्ञान में चलने वाला नजदीक वाला भाई दिखाई दिया, माताएं दिखाई दिया, अरे माताजी को आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, याद नहीं होंगी, माताजी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया, तो ज्ञान के रतन देने की इच्छा अपने आप। नहीं तो किसी को देख रहे माताजी कहां से आई, ये भाई कहां से आया, ये याद आ रहा है तो हम अभी देह के भान में है, ये परख है। किसी को देखते हुए देह का विचार आता है तो हम देह भान में है, बॉडी कॉन्शियस में है। आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे ना, आंखें खोल के चलेंगे। किसी को देखते ही, चाहे कोई भी हो, अगर नेचुरल आप आज पूछ सकते हो अपने आप से, मैं कितना परसेंट देवता बनाऊं, देवता ही संस्कार मेरे अंदर है, तो पूछ सकते हो अपने आप से, देख सकते हो किसी पर नजर जाते ही मेरे मन में क्या विचार आता है। अरे बहन जी मुस्कुराती नहीं है, भाई जी ओम शांति नहीं करता है। अगर औरों से आप कुछ चाहते हो तो देवता नहीं बने हैं, लेने वाले बने हो अभी तक, देने वाले नहीं। सामने वाला मुस्कुराता नहीं, ओम शांति नहीं करता है, मुझे करना है। चलो मुख से नहीं, मन से भी, किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ संकल्प आना चाहिए, ठीक है, ये पूछना अपने आप से। और अभी 7:30 बजे तक योग करेंगे ना, कि और भी सुनते रहेंगे, आत्मा को दोनों चाहिए, है ना, पानी भी पीना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो अभी ज्ञान सुना, अभी इसका उपयोग करो, अभी पूरा 7:30 बजे तक याद रखना कि ये 5 प्रश्न पूछना, देखना मन बुद्धि दरवाजे से बाहर जाती है कि ऊपर जाती है, अपने आप को देख लो। अगर आज आपका मन बुद्धि ऊपर जाती है तो कल सवेरे भी जाएंगी, है ना। तो अभ्यास बाबा आते तक, जैसे बाबा ऊपर से आता है तो आप बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि हमारा अव्यक्त मिलन है, व्यक्ति का मिलन नहीं है, है ना। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है ना, अव्यक्त है तो अव्यक्त स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा ना, अर्थात आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। तो ये अभी अभी अभ्यास करेंगे, ठीक है। ओम शांति।
तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।